दृष्टि से सृष्टि सम्मेलन में आपका स्वागत है। आपके हृदय, मन और रोजमर्रा के जीवन में स्वर्णिम युग को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक विवेक और कहानियाँ।
दीदी सुदेश, ओम शांति और खूब बड़ा सा ओम शांति पूरे विश्व के परिवार की तरफ से हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति और पूरे परिवार को भी ओम शांति। मुझे आपसे मिलकर खुशी है और पूरे परिवार से शेयर करने की भी खुशी है। हम इसी उद्देश्य से यहाँ मिले हैं कि एक ऐसा आध्यात्मिक सम्मेलन हो जहाँ हम इस बातचीत के दौरान स्वर्णिम युग की ओर आज ही से आपको फॉलो करें। आप जानती हैं कि यह बहुत अनोखा सम्मेलन है क्योंकि ये हम सभी को आने वाली इस नई दुनिया स्वर्णिम युग के अलग अलग पहलुओं से उजागर कराएगा और हमें इस युग में जाने की तैयारी करने के लिए मदद करेगा। पर हम इस नई दुनिया को कैसे देखें, कैसा होगा यह भविष्य? मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत सारे गहन अनुभव हैं जो आप हमारे साथ घंटों घंटों तक शेयर कर सकती हैं। पर अगर मैं आपको पूछूं कि जब मैं स्वर्णिम दुनिया कहता हूँ तो वह कौन से उत्तम अनुभव हैं जो आपकी स्मृति में आते हैं, जो आपने बाबा के साथ बिताए इतने सारे वर्षों में अनुभव किए हैं? मेरे लिए स्वर्णिम युग असल में बहुत ही पवित्र एहसास है, आंतरिक सुंदरता का, आंतरिक पवित्रता का। फिर हम सब जब स्वर्णिम युग की बात करते हैं, वह जैसे एक पूरी दुनिया है जिसमें हल्कापन, पवित्रता, संपूर्णता, संतुष्टता, खुशी, सद्भावना। और इसीलिए जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा और परिवार का बनकर देखते हैं, तो जैसे ये सारी बातें मुझ में स्वाभाविक ही आ रही हैं, हालांकि धीरे धीरे हो रही हैं, पर ज्यादा से ज्यादा स्वाभाविक बन रही हैं। सत्युग न केवल तत्वों की दुनिया है, पर जहाँ से मैं देखती हूँ वहाँ मनुष्य भी हैं और सभी के लिए दुनिया है जहाँ हम अनुभव कर सकें और स्वयं को भी अभिव्यक्त और एक्सप्रेस कर सकें। ऐसी दुनिया जहाँ हम स्वतंत्रता से आनंद लें और दूसरों को भी अपने जीवन में उसी स्वतंत्रता से और हल्केपन से अनुभव करते देखें। तो जब से मैं बाबा के पास आई हूँ, मैंने अपने अंदर छिपी शक्तियों को देखा है और बाबा को एक माली के रूप में, एक बहुत ही खास माली जिनके पास हमारे प्रति न केवल बहुत ही उच्च नजर है, पर इस अनोखे माली ने हम सभी को जैसे जागृत बीजों में क्षमता देखी है और उन्होंने हमें कई बार खिलते देखा है, फलदायक बनते देखा है, मीठा बनते देखा है और आगे जाके मौसम के अनुसार अपनी भूमिका बदलते देखा है। हम ये बातें भूल जाते हैं, परंतु बाबा हमें याद दिलाते हैं। मैं अपने पास एक सुंदर दृश्य सदैव रखती हूँ, जैसे कोई बहुत ही सुंदर तस्वीर हो एक बगीचे की, जहाँ खिल खिलाते रंग बिरंगे, हरे भरे, ताजगी भरे प्यारे से फूल, एक प्यारा सा झरना, एक सुंदर सा पहाड़, बहुत ही सुंदर मन भावन नजारा। और फिर मौसम बदलते ही वहीं पेड़ बंजर से बन जाते हैं और बिल्कुल ही अलग नजर आते। इस बदले रूप में जब मैं उस बगीचे को देखती हूँ तो एहसास होता है कि क्या यह वही बगीचा है जहाँ मैं पहले थी। बाबा मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे अंदर एक इच्छा है कि मुझे उसी हरे भरे बगीचे में फिर से पहुँचना है, हालांकि अभी वह बगीचा बंजर पड़ा है, दुनिया अलग है, पर मेरे अंदर की यह इच्छा मुझे बताती है, मुझे एहसास दिलाती है, क्योंकि मैंने उसी याद ही नहीं कर सकती जिसे मैंने एक बार या कई बार अनुभव ही नहीं किया हो, और वही अनुभव को हम याद कहते हैं। इसलिए मैं उस एहसास के साथ याद करती हूँ कि हाँ, मैंने सतयुग देखा है, और देखना यानी बनना और स्वयं को उस सतयुग में जाने के लिए तैयार करना। क्या आप इस एहसास को थोड़ा सा और वर्णन कर सकते हैं? क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको इन गुणों का एहसास है, जैसे पवित्रता, संपूर्णता, इन्हें आप थोड़ी और बारीकी से उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि संबंधों में, प्रकृति से लेन देन में, स्वयं के शरीर के संबंध में, क्या यह एहसास इन संबंधों में विस्तार में हम कैसे व्यक्त करें? मेरे लिए इस एहसास का मतलब है सभी के लिए और स्वयं के लिए भी एक इच्छा कि हम स्वस्थ जीवन जिएं, संपूर्ण स्वस्थ। और जब मैं यह कल्पना करती हूँ, दृश्य देखती हूँ, मुझे एहसास होता है कि प्रकृति कैसे पवित्र बने और उत्तम बने। हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है, और जब सभी पांच तत्व स्वच्छ और शुद्ध होंगे तो निश्चित ही हमारा शरीर और उसकी बनावट भी बहुत ही खास और बहुत ही हल्की होगी। तो इस तरह मैं अपने शरीर को स्वस्थ देखती हूँ। मेरी सभी इंद्रियां, शरीर के कण भी निश्चित ही सामान्य जस हार्मनी में होंगे, और इसका मतलब है कि जब पांच तत्व सामंजस्य में होंगे तो स्वाभाविक ही आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और मैं जैसे देखती हूँ कि असामंजस्य से असंतुलन बनता है, और जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, शरीर के कणों में भी जल्दी ही बदलाव आता है। जब मैं देवी देवताओं को याद करती हूँ या उनकी तस्वीर देखती हूँ जो जरूर किसी चित्रकार ने बनाई है, पर वह भी एक अनुभव है कि जब प्रकृति अच्छी अवस्था में हो तो मौसम भी सुखदायी और आरामदायक होता, शरीर भी पूर्ण रूप से विकसित होता, और बुद्धि भी पूर्णता और परिपक्व बनने की ओर खुशी का एहसास रहता। और भले शरीर की आयु बढ़ती जाए, फिर भी बुढ़ापे का एहसास न होते हुए और भी खुशी और सदा जवान होने का एहसास रहता। जैसे कभी कभी हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते समय बोलते हैं कि एक साल जवान हुए, उस एहसास के साथ कि आप भले शरीर एक साल बड़ा हुआ है, पर एहसास अभी भी जवान है। जब हम देवताओं के लक्षण देखते हैं तो कितने नम्र, कितने अच्छे, कितने कोमल, कोई झुर्रियां नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, चेहरे पर किसी भी प्रकार की, आंखों के नीचे कोई गहरे नहीं। तो जैसे हमारे बाहरी लक्षण हमारे अंदर की स्वास्थ्य और संपन्नता को दर्शाएंगे, उसी तरह मैं कल्पना करती हूँ कि उस सुनहरे स्वर्णिम युग की, जहाँ कभी कभी ऐसा एहसास भी करती हूँ कि हम इस समय इन गुणों के आनंद ले रहे हैं ना, और यह जीवन भी कितना सुंदर है, क्योंकि इस जीवन में मैं अपना नया जीवन बना रही हूँ। इस भ्रावन जीवन को हम वैसे भी नया जीवन कहते हैं, और इस भ्रामन जीवन में अब मैं एक और नया जीवन देख रही हूँ, जो उत्तम है, पवित्र है, शुद्ध है, संतुष्टता से पूर्ण है। इसलिए शरीरी स्वास्थ्य है, कोई लगाव नहीं, कोई भय नहीं, भय नहीं है कुछ भी खोने का, इसलिए कोई लगाव भी नहीं है। तभी अनासक्ति यह शब्द भी नहीं होगा, बस निश्चिंत होंगे, क्योंकि ऐसी पक्की समझ होगी कि मैं इस शरीर की ट्रस्टी हूँ। यह शरीर प्रकृति की एक अनोखी देन है। जरूर मेरे माता पिता इस शरीर को लाने में निमित्त बने, परंतु असलियत में यह शरीर प्रकृति माँ के तत्वों से बना है। स्वस्थ शरीर, सुंदर शरीर, लंबी उम्र, खुशी भरा जीवन, और ऐसी स्थिति में शरीर भान में नहीं कहूंगी, क्योंकि सभी ही सुंदर होंगे, सभी ही स्वस्थ होंगे, आनंद ले रहे होंगे, कोई किसी से तुलना नहीं करेगा, कोई जब किसी की तुलना नहीं करेगा, सभी स्वाभाविक होंगे। जैसे कि बगीचे में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फूल हैं, अलग अलग रंगों के, अलग अलग खुशबुओं के, और यही सब उस बगीचे को शोभा बढ़ाते हैं। कोई भी किसी और को कॉपी नहीं कर रहा, कोई फूल दूसरे फूलों से तुलना नहीं कर रहा। हम यहाँ तुलना करते हैं, पर वहाँ हम जीवंत फूल तुलना नहीं करते, हम वहाँ स्वाभाविक जीवंत फूल होंगे, अल्लाह के बगीचे के, ईडन बगीचे के। हम स्वर्णिम जीवंत फूल, खुशबू हमारे स्वभाव में होगी, और हमारा मन जैसे बहुत ही ताजा होगा। इसलिए स्वस्थ शरीर और बहुत ही ठंडा, ताजा, कोमल, मनमोहक मन होगा। मैं इसी तरह कल्पना करती हूँ, खुश मन, हसमुख मन। इस समय दुनिया में हम हसमुख शब्द का प्रयोग करते हैं, पर हम कई बार सावधान रहते हैं कि हसमुख के साथ साथ मैं केयरफुल और सावधान भी रहूं, क्योंकि कई स्थितियों में हमें सावधानी रखनी होती है कि हम इतने भावात्मक और हसमुख भी ना बन जाएं कि और हम गंभीर और मैच्योर रहें। तो जैसे बालकपने की अवस्था हो, जहां कोई भी भय नहीं और मन की भावनाएं बिना हिचक व्यक्त करें, क्योंकि स्वाभाविक प्रसन्नता और उपलब्धि का एहसास है। जहां उपलब्धि हो, वहां सफलता और संतुष्टता होती है। जहां संतुष्टता हो और भरपूरता हो, तो कोई भी इच्छा नहीं होती और मन की संतुष्टता और परिपूर्णता होती है। स्वस्थ शरीर और शांत सुखी मन। मुझे नहीं लगता कि उस समय सकारात्मक मन कहूंगी, क्योंकि कोई नकारात्मकता है ही नहीं, बस स्वाभाविक रूप में सुहाने। हम उस स्वाभाविक रूप से हसमुख, स्वाभाविक रूप से संतुष्ट और स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होंगे। तो मैं इस समय जब खुद को देखती हूँ, जब मैं आपसे अपने परिवार से बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा दिल नाच रहा है, मेरा मन नाच रहा है, मेरी आंखें नाच रही हैं, जैसे मैंने अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं बहुत ही अति प्रसन्नता से भर जाती हूँ कि आप बस पूछिए ही मत। इतनी खुशी है, इसलिए इसे कहते हैं खुशियाँ भरी दुनिया, सुंदरता भरी दुनिया। इसका मतलब है कि यह बहुत वास्तविक गहरा एहसास है मेरे दिल के अंदर, जो मैंने अनुभव किया है, पर अभी वह मुझे इस पुरानी दुनिया में दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ जब मैं पूरी दुनिया कहती हूँ, इसमें हम सभी मनुष्य आते हैं, हमारा संबंध एक दूसरे से स्वाभाविक सामंजस्य, स्वाभाविक प्रेम, स्वाभाविक आदर, स्वाभाविक सराहना, क्योंकि मुझे जो पसंद है और वह दूसरे में है, तो मैं जरूर सराहना करूंगी। इसलिए यह सारे गुण एक साथ समकालीन बन जाते हैं, साथ में खेलना, साथ में गाना, और क्या हम करेंगे वहाँ, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। इसलिए खुश जीवन और सामंजस्य भरा शरीर, मन और संबंध होगा। एक और बात जो मुझे दिखती है कि प्रकृति इतनी उत्तम होगी कि सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करेंगे और जो प्रकृति भी हमें देगी, वह इतनी सुखदायी होंगी कि सब होंगी और सब भरपूर होंगी। जैसे बाबा वर्णन करते हैं, वहाँ स्वर्णिम हीरे जड़ित महल होंगे। मुझे यह भौतिकवादी नहीं लगता, बल्कि यथार्थवादी रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि प्रकृति इतनी निर्मल होगी, उसमें स्वर्णिम चमकते निखार होगी और पत्थरों के गुण भी इतने शक्तिशाली और यथार्थ होंगे कि वह हीरों की तरह चमकेंगे, असली हीरों की तरह। वास्तव में जब पृथ्वी बदलती है, सारी चीजें जो उसकी गहराई में हैं, जो लंबे समय से बिना कोई बाहरी प्रभाव, मनुष्य के स्वभाव या कोई इच्छा, कोई भ्रष्टाचार, कोई लालच, कोई धोखे से दूर हैं, इन तत्वों की गहराई में यह खजाना छुपा है और यह ऊपरी स्तर पर आएगा। और इसी तरह मैं चित्र देखा करती हूँ कि जब बाबा वर्णन करते हैं कि समुद्र आपको थाली भर के हीरे देंगे और वृक्ष सेवा करेंगे, हवा सेवा करेगी, सवेरे सवेरे चिड़ियाँ चहचहा कर आपको जगाएंगी, तो यह तस्वीर मैं देखती हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, परंतु प्रकृति का वास्तविक रूप है, गुण है। तो जब हमारे पास सब कुछ होगा, बिना कोई लालच के, बिना कोई इच्छा के, वह अपने आप आएगा और प्रकृति भी खुद ही व्यक्त करेगी। प्रकृति भी लालची नहीं है, तत्व भी कंजूस नहीं है, दिलदार है। और इसीलिए मैं धन देखती हूँ भरपूर मात्रा में, परंतु यह धन भी क्या होगा, बस निर्माण की सामग्री। और इसीलिए मुझे कोई भाव नहीं है कि मैं भौतिकवादी बन जाऊंगी। मैं तुलना नहीं करती और धन के होने पर मेरा अहम नहीं जागता। यह धन प्रकृति की देन लगता है और नहीं मैंने प्रकृति को कोई परेशानी दी है। इस तरह तत्व हमारी सेवा करेंगे और मैं भी उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि मेरा स्वाभाविक ही उनकी सराहना करूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं प्रकृति के साथ एक संबंध अभी जोड़ रही हूँ, तभी मुझे यह एहसास नहीं होगा। पर अभी मैं यह समझती हूँ कि कैसे निस्वार्थ भावना में ही संतुष्टता है जो तत्वों और मुझमें यानी मन और प्रकृति सामंजस्य में हो, भरपूर हो, जिससे बाबा कुबेर का भंडार इन शब्दों में वर्णन करते हैं। सब कुछ जैसे खुल जा सिमसिम की तरह होगा, उसकी जरूरत नहीं होगी फिर भी भरपूर होगा, एंड क्योंकि वह भरपूर मात्रा में होगा उसकी प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं होगी, उदाहरण रूप में और प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि जरूरत से कई अधिक मात्रा में वह उपलब्ध होगा। इस तरह स्वास्थ्य, धन, खुशी, संबंधों में मधुरता, जीवन में संतुष्टता, फिर मैं और गहराई में देखूं तो इन सब की नींव है निस्वार्थ भावना और पवित्रता। किसी को भी मालिकपन का भाव नहीं होगा, सब कुछ सभी के लिए होगा, संबंधों में मधुरता होगी, कोई की अधिकार या मालिकपने की भावना नहीं होगी, कोई प्रतियोगिता या ईर्ष्या भाव नहीं रखेगा, कुछ भी खोने की भावना या संकोचित भावना नहीं होगी। इसलिए आपस में बहुत प्रेम और आनंद होगा। सब कुछ इस पहलू से उत्तम होगा। मन, शरीर, संबंध, प्रकृति हमें सेवा देंगे और हम भी खुशी से प्रकृति की सेवा करेंगे। प्रकृति की भी और उसी समय पर जानवरों की भी सेवा, क्योंकि हमारा स्वभाव सहज ही रूप में होगा, जिसे कहते हैं अहिंसक होगा। मुझे लगता नहीं कि उस समय यह शब्द अहिंसक भी इस्तेमाल करते होंगे या हिंसा का शब्द इस पुरानी दुनिया का है, जबकि नई दुनिया में एक रस, प्रेम, आदर और अहिंसा होगा और अहिंसा का कोई नाम और निशान नहीं होगा। नई दुनिया एक ऐसी दुनिया होगी जहां प्रेम, हल्कापन, खुलापन बहुत ही सुंदर परिभाषा होगी आपसी आदर की, क्योंकि वहां समानता होगी, कोई तुलना नहीं, कोई बड़ा या छोटा नहीं, और इसीलिए इसे शाही और राजसी कहेंगे। तो मैं खुद क्या देखती हूँ कि स्वर्णिम युग वह युग है जहाँ प्रकृति के पास अपनी सच्ची सुंदरता होगी और आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्वाभाविक ही आध्यात्मिक होगी। मुझे कोई भी विधि या कर्म कांड नहीं पालन करने होंगे, बल्कि मैं स्वाभाविक ही आध्यात्मिक होंगी, क्योंकि मैं स्वाभाविक ही आत्मिक स्थिति में होंगी। मुझे स्वयं को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे यह सोचना भी पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, जैसे मुझे अभी सोचना नहीं पड़ता कि मैं शरीर हूँ, मैं सुदेश हूँ, यह मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, बस स्वाभाविक है। मैं भूलती नहीं, मैं अपना नाम नहीं भूलती, अपनी विशेषताएं भी नहीं भूलती। अगर मेरे सामने हजार लोगों के ग्रुप की तस्वीर हो तो उसमें भी मैं स्वयं को तुरंत ढूंढ लेती हूँ। मुझे न याद करना पड़ता है, न याद दिलाना पड़ता है। इसी तरह मुझे नहीं लगता कि स्वर्णिम युग में मुझे खुद को यह याद दिलाना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। तो इस स्थिति में जब मुझे स्वयं को याद नहीं दिलाना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, तब मेरी पवित्रता, मेरी शांति, मेरा प्यार, मेरी खुशी, मेरा दूसरों के प्रति आदर, मेरा एक दूसरे से आपसी संबंध स्वाभाविक होगा। बाबा भले कहते हैं कि हीरे जैसा जीवन अब है, पर जब मैं अभी के इन संस्कारों के साथ जाऊंगी, तब भले मैं सोने के बने महलों में रहूंगी जिनकी दीवार हीरे जड़ित होंगी, पर मेरा दिल सोने जैसा होगा और मेरा व्यक्तित्व हीरे की तरह चमकेगा और यह होगी मेरी आंतरिक सुंदरता। और इसी लक्ष्य को लक्ष्मी और नारायण, लक्ष्मी बनूं या नारायण इससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं आत्मा इन गुणों का अवतार होंगी। मैं कोई अच्छी रंग बिरंगी साड़ी पहनने की आशा नहीं करूंगी या कोई बहुत अच्छा सा सोने का ताज पहनने की इच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, शायद फैशन की तरह हो या साथ में खेलते और पहनने की खुशी हो, परंतु यह कोई अधिकार या मालिकपने का प्रश्न नहीं है। बस केवल खुशी होगी कपड़े पहनने की, एक सिस्टम की तरह। तो आध्यात्मिकता, पवित्रता, स्वाभाविक दिव्यता, स्वाभाविक राजसी रॉयल्टी और इस ऊंचे आदरणीय जीवन को ही स्वर्ग कहेंगे। यह केवल तत्वों में ही नहीं दिखेगा, हालांकि तत्व भी सुंदर होंगे। जैसे अभी भी जब हम अच्छे नजारे देखते हैं तो कहते हैं कि कैसे स्वर्ग सा है, बहुत सुंदर। वैसे ही हम मनुष्य भी सुंदर होंगे और स्वयं चमकते हीरे होंगे स्वर्ग के। मुझे लगता है कि क्योंकि हम हर बार खुशी से सांस अंदर बाहर लेंगे, तो हमारी रोशनी से बाहर के हीरे भी और ज्यादा चमकेंगे। क्योंकि यह हीरे तो नहीं जानते कि खुशी क्या है, परंतु हम जानते हैं कि खुशी क्या है, आनंद क्या है। जो अभी अति इंद्रिय सुख है, वह तभी स्वाभाविक सुख होगा। इसीलिए तब स्वाभाविक खुशी की दुनिया होगी और मैं उस दुनिया को इसी तरह से देखती हूँ। हम आपके मन को नाचते और गाते सुन सकते हैं, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है आप सभी को ही एक ही समय पर नाचने और गाने की प्रेरणा दे रही हैं। इस विस्तृत आध्यात्मिक वर्णन के लिए धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आप कर्म इंद्रियों के बारे में भी थोड़ा और विस्तार में बताएं, और जिससे हम अकर्म कहते हैं, न्यूट्रल एक्शंस, क्या यह भी उस निस्वार्थ भावना जो आपने बताई उसी से आती है? जो पवित्रता आपने बताई उसी से आती है? क्या इसी से कर्म को हम अकर्म बना सकते हैं? देखो कि क्योंकि फल की कोई इच्छा नहीं है और कुछ भी गलत करने का भान नहीं है, क्योंकि वहाँ विकार भी मौजूद नहीं होते। और ऐसी बात है जैसे मैं इस समय बात कर रही हूँ और मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, मैं उसे हिलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रही। शायद यह मेरी आदत हो कि मैं अपने हाथों से बात करती हूँ। भले मैं अपने मुंह से बात करूँ, पर मेरे हाथ भी नाच रहे हैं, मेरी आँखें भी नाच रही हैं, तो मैं कोई प्रयास नहीं कर रही, न्यूट्रल हूँ, स्वाभाविक है। तो कोई भी इच्छा नहीं है उसके फल को प्राप्त करने की, जिसे हम अकर्म या न्यूट्रल कर्मा कहेंगे। जो फल की प्राप्ति से परे हो, कोई भी आकर्षण से परे हो, कोई भी भय से परे हो, किसकी भी प्रभाव से परे हो, किसी को प्रभावित करने से भी परे हो, कोई बंधन नहीं, तो अकर्म यही वह कर्म जो कोई भी बंधन नहीं पैदा करे, कोई बोझ नहीं करे, तो कर्म वह है जो कार्य करने की खुशी लाए और आपको दूसरों से पुरस्कार मिले, दूसरों से प्रशंसा मिले, दूसरों से प्यार और आदर मिले, जहां आप कुछ जमा कर रहे हो वह है कार्य। वहां स्वर्णिम युग में कुछ जमा करने की बात नहीं, केवल अनुभव करना और व्यक्त करने की बात है। स्वाभाविक नेचुरल रूप में नेचुरल गुणों से इसे अकर्मा कहेंगे, जैसे कर्मातीत जिसे बाबा कहते हैं, कर्मातीत अवस्था पहुंचना जिसमें कोई बंधन नहीं, और हम वह है जो हमने अभी इकट्ठा किया है। कर्मा के सिद्धांत के अनुसार और लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार इकट्ठा करी हुई चीजों का उपभोग होता जाता है। प्रकृति को कोई समझ नहीं होती और लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार जो भी मैंने इकट्ठा किया है मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ, पर मुझे यह एहसास नहीं होता कि मैं उसे कम कर रही हूँ। मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ, आनंद लेती हूँ, पर उसे बढ़ाती नहीं। आपने मुरली में सुना होगा कि बाबा एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब हम सोने के जेवर बनाते हैं तब वह शुद्ध और साफ होता है। कई बार सोने में मिश्र धातु डालते हैं तो उससे जेवर की क्वालिटी थोड़ी अलग हो जाती है। धीरे धीरे जितनी बार इस प्रकृति रूपी धातु में आत्मा रूपी सोने में मिलना होता है, विकारों का मिश्रण नहीं होता, क्योंकि तब सत्युग में विकार होते ही नहीं। जो मिश्रण हो वह प्रकृति के तत्व हैं और उनसे मुझ में प्रभाव होता है। प्रकृति के तत्व हैं और उनसे मुझ में प्रभाव होता है, क्योंकि प्रकृति के तत्व खुद ही अपनी शक्ति खोते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि उनकी शक्ति कम हो रही है, और आत्मा भी प्रकृति के प्रभाव में आती है बिना इस एहसास के कि वह प्रकृति से प्रभावित हो रही है। क्योंकि प्रकृति मिली हुई होती है, और जब मैं सांस अंदर लेती हूँ या जब बाहर छोड़ती हूँ, जब मैं सांस अंदर और बाहर लेती हूँ, तो इस प्रक्रिया से मैं आत्मा प्रकृति के सामंजस्य में रहती हूँ। इसीलिए जब वह आत्माएं जो सत्युग में पहले आती हैं, वह स्वाभाविक तौर से प्रकृति से सामंजस्य में रहती हैं और वह प्रकृति के सबसे उत्तम और ताजा फलों का आनंद लेती हैं। उनके कर्मा भी स्वाभाविक रूप में साफ और शुद्ध होते हैं। उस स्थिति को परफेक्ट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तम शब्द भी इस पुरानी दुनिया का है, जहाँ हम कमियां भी होती हैं, सुधार करते हैं, बढ़ोतरी होती है, अब इस पुरानी दुनिया के शब्द हैं। पर जब आप उत्तम हो जाते हैं तो किसी से तुलना नहीं करी जाती, तो मुझे नहीं लगता कि परफेक्शन या पूर्णता उस नई दुनिया का शब्द होगा। यह बात ऐसी है जैसे तुलना करते ही मैं कुछ खोने लगती हूँ। शायद थोड़ा बहुत तुलना करना त्रेता युग में शुरू होता है, जब आत्माओं को लगेगा कि कुछ बदलाव आया है। मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ जैसे जब मैं छोटी थी मैं खुश मिजाज स्वभाव की थी, बहुत ही सुंदर, और मैंने हमेशा सबसे खूब प्यार और और आदर अनुभव किया। मुझे हमेशा स्वतंत्रता महसूस होती, किसी बात का कोई डर नहीं। मैं अपने मन से कुछ भी कर सकती, बोल सकती, और भले दूसरे उस बात को स्वीकार न करें तो भी कोई बात नहीं। मैं कहती कोई बात नहीं, वह भी स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा था जैसे मेरे शरीर में बदलाव होते देख सकती हूँ, पर फिर भी मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरे पैर, उन सब की बनावट वैसी ही है, पर थोड़ा बहुत धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में बदलाव आता है। तो मैं कहूँ कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, बट मैं अपनी भावनाओं में, बुद्धि में बूढ़ी नहीं होती, आत्मा रूपी मैं जवान ही रहती हूँ। पर सिल्वर एज यानी त्रेता युग में हमें एहसास नहीं होगा कि हम कुछ खो रहे हैं, पर एक बदलाव जरूर महसूस होगा, जिसे विज्ञान या साइंस में लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, जिससे ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर एक समय आता है कि हम ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं और कमजोरी, विकार शुरू हो जाते हैं और फिर विकर्म, सुकर्म ये शब्द अस्तित्व में आ जाते हैं। अब बेशक हमें सतयुग में जल्दी जाने की प्रेरणा दे रही हैं और हम सब उस अनुभव के लिए उत्सुक हैं। अभी हम आपको जाने दें, उससे पहले क्या आप हम सभी को थोड़े चिंतन और योग में ले जाएंगी और कुछ और विचार प्रस्तुत करें, जिससे हम सभी अपने उस देवी रूप का आह्वान कर सकें कुछ मिनटों के लिए। क्या आप हमें ऐसे मेडिटेशन में ले जाएंगी? धन्यवाद।
ओम शांति, ओम
आई बिकम अवेयर।
मैं अपने आत्मिक स्वरूप के प्रति सचेत हूँ।
ओम
ओम
आई एम अवेयर ऑफ माय इटर्नल ट्रुथ।
मैं अपने अनादि सत्य के प्रति सचेत हूँ।
आई कैन सी,
मैं देख सकती हूँ
सोल,
अपनी आत्मा को,
myself,
खुद को,
being in harmony with matter,
प्रकृति से सामंजस्य रूप में,
clean,
जो पूरी तरह से साफ, शुद्ध,
as is the matter,
जैसे प्रकृति,
so is the mind,
वैसा मन है,
as is the mind,
जैसा मन,
so is influencing the matter,
वैसा उसका प्रभाव प्रकृति पर है,
misusing the matter, so in this body,
प्रकृति को उस अनुसार इस्तेमाल करके इस शरीर में स्वस्थ, सुंदर,
मैटर इज सो जेंटल,
प्रकृति कितनी कोमल है,
डोंट फील एनी वेट ऑफ माई बॉडी,
मुझे शरीर का कोई बोझ महसूस ही नहीं होता।
दिस प्यूरिटी,
यह पवित्रता,
ऑफ बीइंग
का अनुभव
इन फिजिकल बॉडी,
जिसमें शरीर में
बट वेरी लाइट
होते हुए भी हल्केपन का एहसास,
बिकॉज ऑफ मैटर इज क्लीन,
क्योंकि प्रकृति साफ है,
माइंड इज प्लेजेंट,
मन भी खुश मिजाज, पवित्र, स्वाभाविक रूप से है। मैं देखती हूँ
एज इन द कंपनी ऑफ बॉडी,
कि शरीर के संगत में
आई एम नॉट मिस यूजिंग मैटर,
मैं तत्वों का दुरुपयोग नहीं करती, बल्कि उसके मूल्य का आदर करती हूँ।
I can visualize,
मैं देख सकती हूँ कि जैसे मन और प्रकृति दोनों एक दूसरे के जीवन साथी समान हैं, प्रकृति और शरीर एक अनमोल भेंट है, मेरी इंद्रियां मुझे सहारा देती हैं, मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ अपनी खुशी को प्रकट करने में, जो संपूर्णता का अनुभव कर रही है, शुद्ध तत्वों में, वह एक खुराक की तरह है।
And all what I eat,
मैं जो भी खाती हूँ,
is making my mind and healthy, body healthy.
वह मेरे शरीर और मन को स्वस्थ बना रहा है।
Clean environment,
एकदम शुद्ध मन और साफ वातावरण,
pleasant life,
एक सुखदाई सा जीवन,
spirituality,
आध्यात्मिकता
is reality in my life,
मेरे जीवन की सच्चाई है।
It is true love,
एक सच्चा प्यार है,
true harmony,
सच्चा सामंजस्य है,
true respect,
सच्चा आदर है,
appreciation from the heart for each other,
दिल से एक दूसरे के लिए सराहना है,
it is just like all are together,
बिल्कुल जैसे कि सब एक साथ हैं, कोई संगीत बजाने के साधन की तरह,
I might use,
और मेरी धुन
musical instrument to play, to sing, to dance,
उन साधनों की धुन
but I'm dancing,
से खुशी में नाच रही है,
the dance of happiness,
मैं खुशी का गीत गा रही हूँ,
I'm singing the song of joy, each of us,
हम हर एक
is very special,
बहुत ही खास हैं,
each individual is unique.
हर एक अनोखे और निराले हैं,
natural beauty,
प्राकृतिक सौंदर्य से,
natural divinity,
प्राकृतिक अध्यात्म से,
and samskaras, harmony,
मेरे संस्कार में सामंजस्य है,
no inferiority or superiority complex,
कोई हीन या बड़े की भावना नहीं,
this oneness,
एकता है,
is the joy,
बहुत खुशी है, शक्ति है,
uniqueness, but no competition and comparison,
अनोखापन है पर कोई तुलना या प्रतियोगिता नहीं,
is the beauty,
यही अनोखापन पवित्रता है,
I use all the facilities,
मैं सारी सुविधाएं इस्तेमाल करती हूँ जो भी उपलब्ध हैं,
it's for us,
वह हमारे लिए हैं,
I'm not possessive,
पर मैं उन्हें मालिक पने या अधिकार की दृष्टि से नहीं इस्तेमाल करती,
all the comforts,
इसीलिए प्रकृति भी सारे सुख सुविधाएं तत्वों की शक्तियां के साथ सेवा करती और मैं भी प्रकृति की सेवा करती हूँ, जब मैं सांस अंदर और बाहर लेती, यह कुदरती सहयोग है, और जैसे मैंने यह स्वाभाविक रीति से सीखा है,
I feel free,
मैं स्वतंत्रता महसूस करती हूँ इन्हें इस्तेमाल करने में,
everything belongs to me,
सब मेरे लिए है,
all belong to me,
सब मेरा है,
is belonging to each other,
यह एक दूसरे से संबंध में,
is natural strength and oneness,
स्वाभाविक एकता और स्वाभाविक शक्ति होती है,
it is fullness in life,
यह जीवन की संपूर्णता है, यह हल्केपन की दुनिया, प्यार की दुनिया, आंतरिक और बाहरीय सौंदर्य की दुनिया,
it's real bliss,
यह सच्चा सुख है,
it subdues the age of truth,
यह स्वर्णिम युग है, सच्चाई का युग,
no worry,
कोई चिंता नहीं, कोई फिकर नहीं,
हेल्थ,
स्वास्थ्य, धन,
हैप्पीनेस
और खुशी,
आर नेचुरल संस्कार,
हमारे स्वाभाविक संस्कार हैं,
इवन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर,
प्रकृति के तत्व भी,
एनिमल्स,
सुंदर चिड़ियां, जानवर, फूल,
एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू मैटर,
सभी कुछ प्रकृति की देन है, सभी में मनुष्य समान गुण है,
बट ह्यूमन बीइंग्स है,
लक्षण है,
That is like furniture of the house.
जैसे कि वह सब घर के फर्नीचर की तरह हैं, जो महल की शोभा बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सुंदर दुनिया है जहाँ कुदरती परिपूर्णता है। चलो हम सभी नाचें, गाएं, खेलें इस सुंदर सी दुनिया में। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद, ओम आनंद। ओम शांति दीदी सुदेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सुंदर रीति से सतयुग के दर्शन कराए। मुझे लगता है कि हम सब सतयुग की स्टेज और एसी टिकट चाहेंगे आपके साथ सतयुग में जाने के लिए। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए और समय निकालकर अपने यह सारे अनुभव और भावनाएं हम सभी के अंदर फिर से उभारने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।